ओम शांति। आज की टॉपिक के हिसाब से निर्विघ्न जीवन आप जीते रहे, निर्विघ्न बन करके इतने साल बाबा के इस अविनाशी रुद्र यज्ञ के अंदर आप सभी ने निकाले, तो जरूर है बाबा भी वतन से आप सबको गोल्डन फ्लावर्स डालते हुए स्वागत कर रहे होंगे। आज के सुबह की मुरली जब पढ़ रही थी और सुन रही थी तो महसूस हुआ कि आज की टॉपिक का पूरा उत्तर बाबा ने मुरली के अंदर ही दे दिया है कि कोई भी विघ्न कहां से आता है। दुनिया में भी ये कहा जाता है कि विघ्नों की उत्पत्ति कमजोर मन से होती है। प्रॉब्लम्स आर द क्रिएशन ऑफ अ वीक माइंड। तो जहां कहीं भी कमजोरी का प्रयोग होता है, माना जैसे आज बाबा ने कहा कि क्रोध का प्रयोग हुआ, देह अभिमान का प्रयोग हुआ, लोभ का प्रयोग हुआ, कोई न कोई कमजोरी का प्रयोग प्रैक्टिकल कर्म में जब होता है तब विघ्न का निर्माण होता है। कलयुग है, कलयुग में विघ्न न आए तो कलयुग किसके लिए है? कलयुग नाम थोड़ी हो सकता है। तो कलयुग है, कलयुग में विघ्न तो आना ही है, और उस कलयुग के अंदर जब बाबा हम बच्चों को मिला और हमारे लिए जब ये संगम युग हो गया तो संगम युग में बाबा ने हमें वो शक्ति भी दी, विधि भी दी निर्विघ्न बनने के लिए। तभी तो दुनिया के अंदर भी भक्ति के मार्ग में लोग हमें विघ्नहर्ता के रूप में, विघ्न विनाशक के रूप में याद करेंगे। तो जिसकी पूजा 2500 साल विघ्नहर्ता के रूप में हुई हो उसके सामने अगर विघ्न आया भी तो क्या बड़ी बात है? तो जैसे खेल है और खेल में अगर चैलेंजेस न हो, चुनौतियां न हो, तो ये विघ्न तो हमारे लिए चुनौती है। जब भी विघ्न आता है तो माना हमें अपनी कोई ना कोई विशेषता को प्रसिद्ध करने की एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि बाबा ने जो हमारे अंदर योग्यता भरी है वो योग्यता को साकार करने का एक अवसर मिला है। वो विघ्न आया, उसमें हम कोई न कोई विशेषता का प्रयोग करेंगे। जैसे कमजोरी का प्रयोग हुआ तो विघ्न क्रिएट हुआ, तो उस विघ्न के समय अगर विशेषता का प्रयोग करेंगे तो वही विघ्न हमें प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन जाएंगे। यानी दुनिया के अंदर हमारी योग्यता के हिसाब से हमें प्रत्यक्ष करने का एक सुअवसर है। नहीं तो बाबा ने जो हमें ब्लेसिंग्स दिए हैं वो प्रत्यक्ष कब होंगे? खाली खुद वर्णन करते रहेंगे कि हाँ मेरे अंदर ये विशेषता है, ऐसे तो प्रत्यक्ष नहीं होगा। सेवा के मार्ग में भी अगर प्रयोग करते रहेंगे तो भी हरेक अपने आप में इतना व्यस्त है जो देखने का फुर्सत ही नहीं मिलता है। तो इसीलिए विघ्न आया और उस विघ्न में अगर हमने अपनी विशेषता का प्रयोग किया बाबा का जो वरदान मिला उसका प्रयोग किया तो वो विशेषता ही वो प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगी, विघ्न को सॉल्व भी करेंगी, निर्विघ्न भी बनाएंगी और साथ में प्रत्यक्षता का आधार बनेंगे। कि जैसे ही प्रत्यक्ष हुए तो ब्राह्मण परिवार में तो क्या, दुनिया में भी लोग प्रेरणा लेना शुरू करेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति के सामने जब ये विघ्न आया उसने कितनी सुंदरता से उसको पार किया, कितना सरल तरीके से पार किया, तो ये प्रेरणा हमें उनसे लेनी चाहिए। तो वही विघ्न हमें दूसरों के लिए भी प्रेरणा मूर्त बना देता है। इसलिए कहा ये विघ्न आना ये तो एक प्रकार का वरदान हो जाता है, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ऐसे जो कहते हैं कि विघ्न आना ये भी एक वरदान की प्रैक्टिकल अनुभूति करना है। क्योंकि बाबा को तो हम सभी याद करते हैं, बाबा सूक्ष्म में हमें वरदान भी देता है, लेकिन उसकी महसूसता कैसे आएंगी कि बाबा का कौन सा वरदान मुझे प्राप्त हुआ। तो विघ्न के समय जो विशेष याद होती है हमारी, बाबा को विशेष रूप से याद करने लगते हैं निर्विघ्न बनने के लिए, तो उस समय बाबा जो वरदान देता है उस वरदान का प्रत्यक्ष अनुभव वो विघ्न के माध्यम से होता है। बाबा के प्यार का अनुभव आज मैं समझती हूं हर एक के सामने ये अनुभव होगा कि भई हमारे सामने ऐसा प्रॉब्लम आया था और उस प्रॉब्लम को हमने इस तरीके से पार किया, ये अनुभव बन गया हमारे लिए। जो हम सुना सकते हैं भई ये परीक्षा मैंने पार किया, तो वो परीक्षाएं क्या थी, विघ्न ही तो थे जिसको क्रॉस किया, और वो हमारे जीवन का एक अनुभव बन गया कि उस समय बाबा की मदद मुझे कैसे मिली, बाबा ने कैसे मुझे मदद करके उसको पार करने की शक्ति दी, बाबा का कौन सा वरदान उस वक्त जो मिला वो हमेशा के लिए कायम हो गया मेरे लिए, और उस वरदान से मेरा जीवन इतना सहज चलने लगा। तो बाबा जो देना चाहता है वो भी ऐसे समय पर ही देगा, है ना, क्योंकि उस समय हमारी याद बहुत एकाग्रता वाली याद होती है। विघ्न के समय जो विशेष याद करते हैं, विशेष पुरुषार्थ होता है, तो वो विशेष पुरुषार्थ जो है उस समय हमें बाबा के वरदानों को प्राप्त करने की पात्रता विकसित कराता है, और इसीलिए वो वरदान कायम हो जाता है। तो विघ्न ना आए तो वरदान कैसे मिलेंगे, विघ्न ना आए तो बाबा की मदद का, बाबा का प्यार का, परिवार के प्यार का अनुभव कैसे करेंगे, है ना। तो इसलिए कलयुग को कलयुग कहा गया है, लेकिन कलयुग में ये विघ्न आना ये भी जैसे एक प्रकार से बहुत बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि जिस समय भगवान के प्यार का अनुभव हम कर सकते हैं, और उस वक्त ऐसे लगता है कि भले सारी दुनिया ने हाथ छोड़ दिए हो, साथ छोड़ दिए हो, लेकिन एक बाबा ने हमें कैसे पकड़ा था, कैसे बाबा ने हमें पाला था, उस समय बाबा की मुरली में कैसे हमें आफत मिली थी, विधि मिली थी पार करने की, उस समय बाबा के महावाक्य सुनने गए और बाबा ने वही बात का जवाब मुझे दे दिया था, ये हर एक को अनुभव है, है ना। इसलिए कहा कि विघ्न जब आता है, या वैसे भी मुरली कभी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी में हमको विधि मिलेगी, और जब जब मुरलियां मिस होती हैं उस समय विघ्न विकराल रूप धारण कर लेता है, क्योंकि विधि मिली नहीं तो गुस्सा आ गया, कमजोरी का प्रयोग होने लगता है तो वो विघ्न विकराल रूप ले लेता है, जिसको पार करना फिर कभी कभी बहुत कठिन महसूस होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मुरली मिस नहीं करो, क्योंकि उसमें उस दिन कौन सा विघ्न आने वाला है पता नहीं है हमें कि आज के सारे दिन में कौन सा विघ्न आने वाला है, लेकिन आज की मुरली जब पड़ी है और वो विघ्न आता है तो एकदम याद आता है आज बाबा ने कहा गुस्सा नहीं करना है, और नहीं करते हैं तो माना मुरली अटेंशन में आ गई। मुरली जैसे अटेंशन में आई, आज कितनी बार बाबा ने पक्का कराया उस बार, तो वो पॉइंट भूल नहीं सकती है। और इसीलिए जैसे ही शांत और अंतर्मुखी हो गए तो क्या होगा, वो विघ्न विकराल रूप नहीं लेगा, बच गए, निर्विघ्न हो गए। तो हमेशा निर्विघ्न बनने के लिए मुरली हमें बहुत मदद करती है, बहुत आधार बन जाती है हमारे। कभी कभी मुरली के अंत का वरदान हमें बहुत मदद रूप बन जाता है, कभी स्लोगन ही मदद रूप बन जाता है। पता नहीं कहां से बाबा विधि देने वाला है, ये मुझे पता नहीं है, हो सकता है कि अमृत वेले बाबा टचिंग दे दे। इसलिए अमृत वेले भी जब बैठते हैं और मुरली भी जब पढ़ते हैं तो दोनों ऐसा डबल डोज काम करता है निर्विघ्न बनने के लिए। तीसरा विघ्न का कारण है, तो पहला कारण तो देखा, इट्स अ क्रिएशन ऑफ अ वीक माइंड, कमजोर दिमाग ही रचना करता है विघ्नों की। और इसीलिए जितना मन को सशक्त बना दो, पावरफुल बना दो ज्ञान और योग की शक्ति से, तो विघ्न को क्रॉस करना आसान हो जाएगा। दूसरी बात कि कई विघ्न जो आते हैं स्वभाव संस्कारों से, स्वभाव संस्कार से विघ्न कैसे निर्मित होती है, तो जहां हमारे स्वभाव में सरलता नहीं है, सहजता नहीं है, इजीनेस नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड नेचर बनता जा रहा है, कई बार देखते हैं तुम तो जब कॉम्प्लिकेटेड नेचर बन जाए, इजीनेस खत्म हो जाए, सरलता खत्म हो जाए, सहजता खत्म हो जाए, तो वहां विघ्न आता है। या तो जिसको कहा जाए कि परिपक्वता नहीं है विवेक की, बात आई है लेकिन उसको समझ नहीं पाए, परिपक्वता न होने कारण तो दृष्टिकोण हमारा नेगेटिव बन जाता है, मनोवृत्ति हमारी रिएक्टिव हो जाती है। और जब मनोवृत्ति रिएक्टिव हो गई, दृष्टिकोण हमारा नेगेटिव हो गया, तो व्यर्थ संकल्प की क्रिएशन बहुत तेजी से चालू हो जाती है, और वहां सहजता सरलता नहीं है नेचर में, तो वो विघ्न को और क्या करेगा, मैग्नीफाइड कर देगा। नहीं तो जो बाबा कहते हैं कि विघ्न माना टाइगर पेपर टाइगर है, तो पेपर टाइगर भी डराने वाला वास्तविक स्वरूप में खड़ा हो जाता है, क्योंकि परिपक्व बुद्धि नहीं है, इसीलिए दृष्टिकोण हमारा सही न होने कारण व्यर्थ संकल्प की जो क्रिएशन है बहुत अधिक हो गई, और वो व्यर्थ संकल्प ही हमें कई बार और गहरा फंसाता जाता है उसमें। तो इसलिए नेचर को हमें नेचर क्योर करने की आवश्यकता है। बाबा के बच्चे बनने के बाद सहज और सरल नेचर बना ले हम अपने, उसके लिए ज्ञान की परिपक्वता को विकसित करना बहुत जरूरी है। ज्ञान की परिपक्व अवस्था तब आएंगी जब हर रोज कोई न कोई ज्ञान की पॉइंट को, जो मुरली की पॉइंट होती है, कोई न कोई ज्ञान की पॉइंट को हम प्रैक्टिकल यूज करके देखें। कई बार ये ज्ञान की पॉइंट्स को अगर हम यूज करना करने के तरीके को सीख लें, कैसे यूज करना है, क्योंकि योग का दूसरा नाम है प्रयोग। योग हम है, योगी है, माना हर वक्त के प्रयोगी है, चाहे मनसा लेवल पर प्रयोग ही कर बन रहे हैं, क्योंकि याद सारा दिन तो बनेंगी नहीं, कभी याद कभी ज्ञान, दोनों का बैलेंस चलता रहेगा। तो कभी बाबा की याद में है, कभी ज्ञान के प्रयोगी है। तो प्रयोग भी चाहे मनसा लेवल पर, वाचा लेवल पर, कर्मणा लेवल पर, संबंध संपर्क के लेवल पर, परिस्थितियों के लेवल पर, हर जगह पर जब वो ज्ञान की पॉइंट्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना सीख लेते हैं हम, कि ये पॉइंट को कैसे अप्लाई करना चाहिए, तो वहां वो खेल और भी मजेदार हो जाता है, वो विघ्न विघ्न महसूस नहीं होता है। आजकल की दुनिया के अंदर हर एक के पास लगभग एंड्रॉइड फोन्स होता है आजकल, है ना? और एंड्रॉइड फोन्स की विशेषता क्या होती है कि उसमें एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा, एप्स बहुत आते हैं, और जिसको एप्स यूज करना आ गया वो कहीं भी बैठा होगा सारा दिन लगा रहेगा। उस कमरे में अगर 10 लोग होंगे ना तो भी उसकी बातचीत नहीं होगी, एप्स चलता रहेगा और उसमें उसको नींद नहीं आती है। वैसे अगर किसी से बात करने के लिए बैठाओ तो बोर भी लगेगा, है ना, बोर हो जाएंगे, या कुछ पढ़ने के लिए कहो तो भी अच्छा नहीं लगे। लेकिन आज एप्स यूज करने में कोई बोर होता है क्या? नहीं, बोरिंग नहीं लगता है, एंजॉय करते हैं हर वक्त, क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी महसूस होती है, कुछ आदान प्रदान। और उसमें जहां पर अच्छी बातों का आदान प्रदान हो तो और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। और अच्छी बातें जितना आदान प्रदान करते, जितने लोगों को भेजते हैं, करते हैं, तो खुशी भी मिलती है, शेयर कर रहे हैं, खुशी मिल रही है, उसमें बोरिंग नहीं लगता है। इसी तरह ज्ञान के भी एप्स है, ज्ञान की हर पॉइंट एप्स है। चाहे ड्रामा ले लो, ड्रामा सबसे बड़ा एप्स है। ड्रामा का एप्लीकेशन आप यूज करके देखो हर जगह पर, कितने विघ्न में निर्विघ्न होना आसान हो जाए। जैसे वो इंटरेस्टिंग महसूस होता है कि उसमें कितना घंटों बीत जाता है तो भी पता नहीं चलता है, इसी तरह ज्ञान के एप्स को जो यूज करना जानता है कि ड्रामा की पॉइंट को कहाँ यूज करना है, है ना, अंतर्मुखता की पॉइंट को कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, तो हर एक पॉइंट का एप्स अगर हम सीख ले, समझ ले, तो विघ्न जैसी कोई बात महसूस नहीं होगी, विघ्न आ नहीं सकता है, क्योंकि हमें और भी अनुभवी बना देता है। जहां प्रयोग किया और सक्सेस मिला, मानो मैंने संबंध संपर्क के लेवल पर ड्रामा की पॉइंट को प्रयोग किया, या कोई परिस्थिति आई उसके लेवल पर ड्रामा का बिंदु लगाने का प्रयोग करके देखा, इस एप्लीकेशन को यूज किया, संबंध संपर्क में मधुरता या वैल्यूज के एप्स को कैसे यूज करना है, वैल्यूज का भी बहुत बड़ा एप्स है। वैल्यूज के एप्स को यूज करने का अगर मुझे तरीका आ गया तो देखो हर संबंध में कितनी क्रिएटिविटी हो जाएगी, कितना सुंदर अनुभव आपका बनने लगेगा, विघ्न वहां आएगा नहीं। खाली मन शैतान का घर कहा जाता, लेकिन अगर हम इस तरह के ज्ञान के पॉइंट्स के एप्लीकेशन में अगर बिजी हो जाए तो उसके सामने विघ्न कहां से आ सकता है? विघ्न आ नहीं सकता है। और हर एक बार एक नया क्रिएटिव अनुभव प्राप्त करने लगेंगे कि सचमुच संबंधों में अगर ये मधुरता, ये वैल्यूज का एप्लीकेशंस अगर यूज करना सीख लिया मैंने, तो संबंधों से विघ्न आ नहीं सकता है। तो ये अगर प्रयोग करना आ जाए तो ज्ञान एक खेल की रीति से लगेगा, और अगर कोई विघ्न आया भी तो विघ्न को मिटाने का भी एक खेल महसूस होने लगेगा। चौथी बात, अंतिम समय चल रहा है, कर्मों का खाता चुक्त हो रहा है, तो जो भी हमारे जिसके साथ भी हम कर्जदार है, कर्मों का कर्जदार है, हर एक अपना कर्ज चुकाने के लिए अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे? ये समय में नहीं आए तो कब आएंगे? सतयुग में तो आने नहीं है, जो आएंगे तो अभी लास्ट जो है इसी समय में आने वाले हैं सारे। तो समझो कोई विघ्न अगर स्वभाव संस्कार से आ गया तो ये कर्जदार आए हैं, अपना कर्ज चुकाना है मुझे, उतार देना है, और उतार दे करके हल्के हो जाना है। तो व्यर्थ चलाने के बजाय ये सोचे हम कि आए हैं उसका चुकतू करो, चुकतू कर देंगे तो फिर कोई बनेगा नहीं, व्यर्थ संकल्प चलाएंगे तो बनेगा और हिसाब कड़ा हो जाएगा, और हिसाब कड़ा होगा तो और यहां ही चुकतू करना पड़ेगा, तो इतनी तकलीफ से मुझे ही गुजरना पड़ेगा। तो विघ्न विनाशक बनने के लिए या निर्विघ्न सदा रहने के लिए मुझे कर्जदार के कर्ज को चुकतू कर देना है, पूरा कर देना है, यही समय है। इसीलिए बाबा जब कहते हैं कि बच्चे ब्राह्मण जीवन में विघ्न को तो तुम वेलकम करो, क्यों वेलकम करो? वेलकम करने के लिए क्यों कहते बाबा विघ्नों को वेलकम करो? एक तो कर्ज चुकतू हो जाएगा हमारा, दूसरा लिफ्ट बन जाएंगी। एक विघ्न जो है यही लिफ्ट का काम करेगा आगे बढ़ाने का। टेस्ट पेपर्स है, ये टेस्ट पेपर्स मुझे पास करना है, और जितना पास करते जाएंगे उतना हमारा नंबर तो आगे बढ़ना ही है ना। एक तो ये गारंटी मिल जाती है, जिसके सामने सबसे ज्यादा विघ्न आता है तो गारंटी है कि सबसे ज्यादा जन्म हमारे हुए हैं, कंफर्म है ना, कंफर्म है कि अधिक जन्म हुए हैं, और सत्युग से नंबर वन में आने वाले हैं हम। हो सकता है 108 की माला में आने वाले हैं हम, या 8 की माला में भी आ सकते हैं। तो इसीलिए उनके भाई आईएएस की एग्जाम कितने लोग पास करते हैं, कम लोग होते हैं, और उसमें भी पासिंग रेट क्या होता है? आईएएस के जितने बैठे होते उसमें भी पास कितने लोग करते हैं? 3-4 मैक्सिमम, 3-4 लोग पास होते हैं आईएएस की एग्जाम, इतनी टफ है। तो 8 के माला में आना या 108 की माला में आना, ये आईएएस की एग्जाम ही हो गई ना। तो आईएएस की एग्जाम वालों के सामने तो पेपर भी तो ऐसे ही आएंगे। तो अगर बड़ा परिस्थिति का पेपर, बड़ा पेपर अगर आए तो समझो वी आर क्वालिफाइड फॉर द आईएएस। 8 के लिए मैं उम्मीदवार हूं, भगवान जानता है कि ये उम्मीदवार है 8 के लिए, इसलिए ये इतना बड़ा पेपर आया है। ये 108 के लिए मैं उम्मीदवार हूं तो खुशी होनी चाहिए ना, तो वेलकम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? विघ्न जिसके सामने आता ही नहीं है, नहीं, त्रेता की अंत की आत्माओं के सामने विघ्न थोड़ी आएगा, कितने आएंगे? लास्ट बेंचेस वाले जो है तो उसके सामने जो है विघ्न आएंगे क्या? लेकिन जो उम्मीदवार है, भगवान को उम्मीद है, ये 108 की माला का ये रत्न है, तो उसके सामने उतना बड़ा पेपर तो आएगा, तो इसलिए वेलकम करना चाहिए। तो वेलकम करेंगे, चलो पास हुए नहीं हुए वो सेकेंडरी पॉइंट है, लेकिन उम्मीदवार तो है। इस बार नहीं पास हुए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पास हो जाएंगे। तो कंफर्मेशन है कि हम सत्युग की आदि की आत्मा है, तभी इतने विघ्न आते हैं। बाबा जब भी हमें मुरली में कभी पूछते हैं, बच्चे लक्ष्य क्या है, क्या बनना चाहते, लक्ष्मी नारायण या राम सीता, हमने हमेशा जवाब क्या दिया? हाँ, लक्ष्मी नारायण का ही जवाब दिया ना, किसी ने राम सीता का तो जवाब नहीं दिया है। तो लक्ष्मी नारायण के लिए एग्जामिनेशन कैसी होंगी? मैं विचार सागर मंथन कर रही थी कि भाई लक्ष्मी नारायण की क्वालिफिकेशन क्या है। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और सर्वगुण संपन्न। तो मेरे अंदर सारे गुण है या नहीं है मुझे कैसे पता चलेगा? तो हर गुण का पेपर, हर गुण का पेपर तो आएगा ना। अगर मेरे सामने सहनशीलता का पेपर ही ना आए तो माना मेरे अंदर सर्व गुण तो होंगे नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मैं सहनशीलता में पास हूं या फेल हूं। मधुरता का पेपर ही ना आए मेरे सामने तो मैं पास हूं या फेल हूं मुझे कैसे पता? तो सर्व गुण संपन्न बनने के लिए हर गुण का पेपर आएगा, तभी मैं लक्ष्मी नारायण के लिए क्वालिफाइड होंगी। अच्छा, 16 कला, तो हर कला का पेपर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो भगवान की जब इतनी उम्मीद है कि आपको इतना बड़ा टाइटल दे दिया कि 700 ब्राह्मण से उत्तम है, तो ऐसे ही थोड़ी टाइटल मिला, कितनी कैपेसिटीज है। कन्याओं में तो फिर भी कैपेसिटी की लिमिटेशन है, लेकिन आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं। कन्याएं फिर भी हार्ड वर्क शायद नहीं कर पाए, सभी कन्याओं में कैपेसिटी नहीं कि हार्ड वर्क कर सके, लेकिन तो भाइयों का काम बहनें कर सके ये जरूरी नहीं है, लेकिन भाई बहनों का काम भी कर लेते हैं, कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? तो ऐसे ही थोड़ी 700 ब्राह्मण उत्तम कहा ये। तो कन्याएं कुमारों का काम नहीं कर सकती है, लिमिटेशन है कहीं ना कहीं, लेकिन कुमार के सामने कोई लिमिटेशन नहीं। वह कन्याओं का काम भी कर लेते हैं, गृहस्थियों का काम भी कर लेते हैं और कुमारों का काम भी कर लेते हैं। अब जब इतना कार्य करना है, भगवान की भी एक उम्मीद है, तो विघ्न तो आएंगे। विघ्न ना आए तो हो नहीं सकता है, लेकिन उसको पार जिसने कर लिया तो उसके लिए वही हाल है जैसे वो खेल आता है कि सिमसिम दरवाजा खुल जा, सिमसिम दरवाजा खुल जा। तो एक एक पेपर जो पास करते हैं ना, तो भाग्य का सिमसिम दरवाजा खुल जा, एक नया भाग्य प्राप्त कर लेते। तो वो दरवाजा खुल गया, आगे बढ़े, वो दरवाजा सिमसिम खोल दिया, बस सिमसिम दरवाजा खुल जा।
शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है।
शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन
دنیا بنانی ہے شانتی کی شکتی سے شانتی جگ میں لانی ہے شانتی کی شکتی سے
کرتے ہیں نا تو بھاگیہ کا سمسم دروازہ کھل جا, ایک نیا بھاگیہ پراپت کر لیتے تو وہ دروازہ کھل گیا, آگے بڑھے, وہ دروازہ سمسم کھول دیا, بس سمسم دروازہ کھل جا. اور اس کے لیے جو بولنا ہے سمسم دروازہ کھل جانے کے لیے وہ ہے کون سا منتر ہے, من منا بھو, من منا بھو مدیاجی بھو, کہ بھائی میں مدیا میں آنے والے وشنو کے راجدھانی میں نمبر ون کے گریڈ میں آنے والی آتما ہوں. تو من منا بھو مدیاجی بھو کا منتر کا پریوگ, یہی سمسم دروازہ کھل جا. اور یہ سمسم دروازہ جس کو کھولنا آ گیا وہ ایک ایک بھاگیہ کھولتے 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 کہاں پہنچ جائیں گے, نمبر ون کے گریڈ میں تو پہنچیں گے ہی, ہے نا. مجھے یاد آتا ہے کہ بڑی دادی جی نے ایک بار, بہت سال پہلے کی بات ہے, شاید کنیاؤں کے یا ٹیچرز کی بٹھی کے اندر دادی نے ایک بار چٹکی لکھوایا تھا کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم 108 میں آنے والے ہیں یا 16108 میں آنے والے ہیں, کس میں آنے کی آپ کو یہ ایکسپیکٹیشنز ہے اپنے ویوہار سے کرم سے, وہ آپ اپنا اینالائسس کرو اور لکھو, ہے نا. تو اس سمے جو ہے بڑا انٹرسٹنگ بھی رہا, کہیں میاں مٹھو بھی بن گئے, ہے نا, اور کہیں جو ہے اپنا کم ایسٹیمیشن بھی کر لیا کہ بھئی اتنا تو بہت مشکل ہے. لیکن ایک انٹرسٹنگ رہا اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے, سیلف اینالائسس کرنے کے لیے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے اگر نروگنک بننے کے لیے بابا نے ہمیں پریرنا دی ہے اس سیزن کے اندر, سیزن کی مرلیاں جب آتی ہے سامنے تو یہی آتا ہے کہ بابا نے یہ پریرنا جو دی ہے وہ اسی لیے کہ اب فائنل کی اور ہم جب آگے بڑھ رہے ہیں تو ایک دم ہمارا سوروپ نروگن کا پرتیکش کرنا ہے, کیونکہ تبھی تو دنیا کے لوگوں کا سر اپنے آپ جھک جائیں گا, ہے نا. ایسے کماروں کو دیکھتے, آج بھوگ کا سندیش سن کر کے بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ بابا نے آپ لوگوں میں کئیوں کو شرون کمار کے روپ میں دیکھا, کئیوں کو تپسوی کمار کے روپ میں دیکھا, کئیوں کو راج رشی کے روپ میں دیکھا, تو لگا کہ بھگوان بھی دیکھو کتنا سندر طریقے سے, ہر ایک کی وشیشتا اپنی اپنی ہے, ہر ایک کی وشیشتا اپنی اپنی. اور اس روپ میں بھگوان آپ کو جب دیکھ رہا ہے تو کتنا گرو محسوس ہوتا ہے کہ خود کے لیے بھی کہ بھائی دیکھو ہم ایسے کمار ہے, ایسا محسوس, ایسا ریئلائزیشن. یعنی بٹھی کے آرمبھ میں ہی بھگوان نے کتنا سندر ریئلائزیشن دے دیا کہ اس ریئلائزیشن میں بھی, اس سوامان میں بھی اگر ہم استھت ہو جائے تو نروگن بننا کون سی بڑی بات ہے. تو نروگن بننے کے لیے جیسے سوامان کا ابھیاس کرنے کے لیے سکھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ سوامان لے لو, یہ سوامان میں اپنے آپ کو سارا دن استھت کر لو, تو آج بھگوان نے تو کتنا سندر سوامان دے دیا کہ اپنے آپ کو دیکھے کہ میں وہ تپسوی کمار ہوں. تو میری رکمنی دیدی سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا کہ جب بابا نے کہا راج رشی تپسوی کمار اور شرون کمار, تینوں میں کیا کس پرکار سے بابا مانا یہ ٹائٹل دے رہے تھے, تو دیدی نے بہت اچھی بات بتائی. رکمنی دیدی نے کہا کہ شرون کمار کا مطلب ہے, شاید پتا نہیں, ہاں, جو ماں پتا کی سیوا ساتھ میں کرنے والے ہیں تو گھر میں رہ کر کے ماتا پتا کی سیوا بھی کر رہے ہیں, گیان میں بھی इतना अच्छी तरह से चल रहे हैं, सेवा भाव जिसके अंदर है, उसको श्रवण कुमार कहा। तपस्वी कुमार उनको कहा कि जिनकी तपस्या अखंड रही है, भंग नहीं हुई है, कोई भी रीति से भंग नहीं हुई, मनसा वाचा कर्मणा किसी भी लेवल से उनका जो पवित्रता की तपस्या है कभी भंग नहीं हुई, तो उनको जब बाबा देखता था तो वो तपस्वी कुमार के रूप में देख रहा था। और जो है राज ऋषि जब बाबा ने कहा तो कैसे मना, राज ऋषि की स्थिति में बेहद के वैराग्य वृत्ति और अपने ऊपर संपूर्ण अधिकार उस रूप में देख रहा था बाबा। तो जब इनका ये सुन रही थी कि बाबा ऊपर किस रूप में देख रहा था, ये तीनों को भले बाबा ने सुनाया भी थोड़ा, लेकिन उसके बाद भी आपने भी वहां देखा होगा कि किस रूप में बाबा देख रहा था। तो उन्होंने जब सुनाया तो मुझे लगा कि शायद कन्याओं को ऐसे टाइटल नहीं मिले अभी तक, है ना, आप लोगों को इतना सुंदर टाइटल बाबा ने दे दिया है और इतना सुंदर इमर्ज किया बाबा ने आपको ऊपर, और एक श्रेष्ठ स्वमान में ही भट्टी के आरंभ में ही स्थित कर दिया। तो ये स्वमान भी अगर रहे तो कितना सुंदर। स्वमान के लिए जब हमेशा आता है कि निर्विघ्न स्थिति बनाने के लिए जितना स्वमान का अभ्यास अधिक होगा उतना निर्विघ्न बनना आसान हो जाएगा। बाकी तो जैसे कहा जाता है कि भाई तूफान जिसका रास्ता रोक न सके संसार क्या रोकेगा, और भगवान जिसके साथ है तो उसका दुनिया क्या बिगाड़ सकती है। माना निर्विघ्न तो उनके लिए बनना स्वाभाविक है, सहज है। दूसरा, बाबा ने ये सीजन में जो विशेष निर्विघ्न बनने के लिए हमें इशारा दिया, क्यों दिया, क्यों बाबा ने कहा बच्चे अब निर्विघ्न बनो। एक तो कर्ज लेने वाले कर्जदार सारे आएंगे, वो तो है ही है, लेकिन वो तो चुप तो कर देंगे। फिर भी जो बाबा ने कहा कि अपना स्वरूप निर्विघ्न प्रत्यक्ष करो, निर्विघ्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो, तो ये क्यों कहा। तो बाबा की मुरलियों का अध्ययन करते हुए एक बात मेरे सामने आई जिसके ऊपर मेरा थोड़ा विचार चला कि बाबा ने ये बात शायद इसीलिए कही कि निर्विघ्न आत्मा जो है इतनी अंदर से मजबूत हो जाएंगी, इतनी उनकी अवस्था स्ट्रांग हो जाएगी कि आने वाले समय में जो पेपर है, चाहे प्राकृतिक पेपर है, चाहे दुनिया के जो सीन्स है, जो भी सीन ड्रामा के अंदर आने हैं, अंतिम सीन्स, जो खुने नाहक खेल के सीन्स आने हैं, तो ये खुने नाहक सीन्स को देखने की जो हिम्मत है वो निर्विघ्न आत्मा के अंदर ही होगी। जो निर्विघ्न नहीं होगा वो बहुत जल्दी इफेक्ट में आ जाएगा और अंतिम पेपर को पास नहीं कर पाएगा। बाबा के ये शब्द मुझे याद आते हैं कि जिसने बहुत काल का ये अभ्यास किया हो वो ये अंतिम पेपर को देखने की हिम्मत रख पाएंगे, और बिना हलचल के अंदर में कोई भी प्रकार की हलचल नहीं होगी और उस पेपर को पास करना उसके लिए आसान होगा। और बात सही है, अगर विघ्नों के प्रभाव में हम आ जाते हैं, चाहे इमोशनली ही क्यों ना आ जाए, फिजिकल तो आते ही है, लेकिन जैसे भावनात्मक होकर के भी इमोशनली हम हो जाएंगे तो उस पेपर को क्रॉस करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो इमोशनल हुआ खुने नाहक खेल को देखते हुए या प्राकृतिक स्थितियों को देखते हुए जो इमोशनली अंदर में ये हो गया, उस समय उसको बाबा की याद मुश्किल होगी। इतना वो स्वरूप बन जाएगा उस पेपर का या उस परिस्थिति का स्वरूप बन जाएगा, तो बाबा की याद नहीं होगी और वो अंतिम पेपर को क्रॉस करना बहुत मुश्किल होगा। अभी अंतिम समय चलने के कारण ही बाबा ने ये बात हम बच्चों को कही कि बच्चे अब निर्विघ्न बनने का अभ्यास, ऐसा बनाओ अपना ये स्वरूप प्रत्यक्ष कर लो, क्योंकि जितना ये स्वरूप हमारा प्रत्यक्ष हो जाएगा उतना कोई भी पेपर हो, लेकिन हम अचल अडोल भावनात्मक रूप से भी, कोई रिएक्टिव रूप से भी उसके प्रभाव में नहीं आएंगे और सहज ही डिटैच होकर के ऊपर उड़ जाएंगे। या उस समय जो आत्माएं आएंगी उसको उस तरह का वरदान दे सकेंगे, उनके विघ्नों को हरने के लिए भी हम निमित्त बन सकते हैं, उनको अंदर की सांत्वना देने के लिए या अंदर की एक स्ट्रेंथ देने के लिए, शक्ति देने के लिए हम तभी पात्र बन सकेंगे। इसलिए बाबा ने इस सीजन में जो हमें कहा कि बच्चे निर्विघ्न बनो, क्योंकि निर्विघ्न बनने से ही ये जो अंतिम सेवा का स्वरूप है वो हमारा हो सकेगा। और ये बात कुमार से अच्छा तो कोई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर भी जैसे मैंने कहा कुमारियों की, बहनों की कुछ लिमिटेशन है कि वो बहुत जल्दी भावुक हो जाती है, लेकिन कुमार बैलेंस में रह करके कार्य कर सकेंगे। तो ये भी आपको उम्मीदवार बना देती है इस पेपर को क्रॉस करने के लिए, या उस समय मददगार बन करके, भगवान की भुजाएं बन करके मददगार बनने के लिए, या दूसरों को जैसे आथत देने के लिए जो एक मनोबल आपके पास होगा वो और किसी के पास नहीं होगा। तो इसीलिए बाबा ने ये स्वरूप को प्रत्यक्ष करने के लिए हम बच्चों को इशारा दिया है। अब यही स्वरूप हमारा प्रत्यक्ष, और उसके लिए सबसे सहज से सहज पुरुषार्थ क्या है, क्या ऐसा अभ्यास करें कि इस स्थिति को हम प्रत्यक्ष अपने स्वरूप में ले आ सकें। क्या अभ्यास करना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, आत्मिक स्थिति का अभ्यास और पहले से ही विघ्नों को विजुअलाइज करके उसको खत्म करते हुए अपने आप को देखें। अच्छा, और हाँ, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये अमृत वेला वरदान ले लो बाबा से। और हर रोज जो बाबा ने कहा कि अमृत वेले, एक तो सफलता के वरदान के लिए तो जरूर कहा, लेकिन हर रोज अमृत वेले जब हम ये अभ्यास करेंगे कि मैं निर्विघ्न आत्मा हूं, मैं निर्विघ्न आत्मा हूं, उस स्वरूप को इमर्श करो। मुझे परिस्थितियों को इमर्श करने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं अपना ये स्वरूप देखूं कि मैं निर्विघ्न आत्मा हूं, ये स्वरूप जितना अपना इमर्श करो अमृत वेले, और वरदान बाबा का मिलता है तो सफलता जन्म से अधिकार है, ये वरदान बाबा का मिल जाता है। लेकिन मुझे ये स्वरूप को इमर्श करना बहुत आवश्यक है। एक होता है कि मैं विघ्न विनाशक आत्मा, स्वमान है हमारे उसमें कि विघ्न विनाशक आत्मा, एक है निर्विघ्न आत्मा। जब हम ये स्वमान लेते हैं कि मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, इसका मतलब मैं विघ्नों का आवाहन कर रही हूं, क्योंकि विनाशक कब बनूंगी? जब विघ्न मेरे सामने आएंगे तब मैं विनाश करने वाली बनूंगी और तब मैं उसको पार करूंगी। अब वो समय नहीं है कि भाई अभी तक भी हम विघ्नों से लड़ते रहे, विघ्नों का आवाहन करते जाए, उससे लड़ते रहे और उसमें पास हो, ये समय नहीं है। अब ये समय है कि मैं निर्विघ्न आत्मा, मैं अपनी एनर्जी को विघ्नों के साथ लड़ने में वेस्ट न करूं। इसलिए अब ये स्वरूप मुझे अपना प्रत्यक्ष करना है कि मैं निर्विघ्न आत्मा हूं। इस स्वरूप में अपने आप को देखना है और बाबा का हाथ अपने सर पे उस वक्त अमृत वेला वरदान के रूप में महसूस करे। बाबा वरदान दे रहा है और बाबा भी जैसे सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि तुम निर्विघ्न आत्मा हो, फिर देखो सारा दिन कैसा बीतता है। बातें आएंगी, ये नहीं कि बातें नहीं आएंगी, लेकिन क्योंकि मैंने ये वरदान लिया है निर्विघ्न होने का, तो वो बातें मेरी स्टेज को इफेक्ट नहीं कर सकती है। विघ्न विनाशक बनने के लिए जैसे ग्राउंड पर युद्ध करने वाले सैनिक होते हैं, ग्राउंड पर युद्ध करने वाले, एक एक विघ्न आएगा उसको विनाश करते जाए और आगे बढ़ते जाए, लेकिन निर्विघ्न माना वो सब विघ्नों को ऊपर से जैसे क्रॉस कर देना। अब समय अनुसार ये स्थिति हमारी बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि मैं हूं ही निर्विघ्न आत्मा, ये अपने आप को देखे तो सहज और सरल हो जाएगा पुरुषार्थ। तो इसीलिए हम सभी बाबा के वरदानों को अनुभव करते हुए ब्राह्मण जीवन को इतना सुंदर, सहज सरल महसूस करते हुए, हर वक्त आगे बढ़ने का अनुभव करते हुए, वैसे बढ़ते आए हैं, बढ़ते ही रहेंगे, और एक एक बात को सहज रीति से क्रॉस करते हुए अपने एक ग्रेड स्टेटस के लिए तत्पर है, पुरुषार्थ में तत्पर है।